अभी लिंक मुझे आया नहीं है अभी तक। अरे बोल
हरे कृष्णा। तो अभी यहाँ पे रविवार सत्संग कार्यक्रम की शुरुआत होने वाली है, तो सब आगे आ जाइए। बहुत ही सुंदर कथा होगी यहाँ पे, एक घंटे का ये कथा का प्रोग्राम होगा, और उसके बाद यहाँ पे इस मंदिर में राजभोग आरती का कार्यक्रम भी होगा। तो जितने भी जेंट्स हैं, जेंट्स इस साइड बैठिए, ये साइड में बैठिए आप, और माताएं जो है माताएं इधर आ जाइए ये साइड में। आ जाइए यहाँ पे, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए यहाँ पे। अभी सब भीड़ होगी तो जो बाद में आएंगे तो पीछे बैठेंगे वो सब। अच्छा प्रभु जी इस साइड आ जाइए, प्रभु जी इस साइड आ जाइए, और सब लेडीज जो है माताएं जो है यहाँ पे बैठेंगे। ओके हाँ इधर बैठिए। तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर प्रेजेंटेशन के साथ ये कथा होगी, तो आपको भी बहुत आनंद आएगा कथा सुनते समय। तो सब यहाँ पे आ जाइए, बैठ जाइए यहाँ पे नीचे, जिनका भी दर्शन हुआ है यहाँ पे बैठ जाइए। तो हमारे आज के जो प्रवचन करता है श्रीमान अभिमन्यु प्राण प्रभु जी, तो अभिमन्यु प्राण प्रभु जी जो है ये इन्होंने 2008 में उनकी बीटेक डिग्री जो है उन्होंने प्राप्त की है इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन में। उसके बाद प्रभु जी जो है वो इंफोसिस में जॉब करते थे, और फिर 2012 में अभिमन्यु प्राण प्रभु जी जो है इन्होंने ये जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ जो है यहाँ पे फुल टाइम इन्होंने ब्रह्मचर्य आश्रम जो है ज्वाइन किया है, और इसके बाद पूरा समय जो है ये गीता भागवत के प्रचार के लिए वो देते हैं। उसके पहले कुछ साल वो उन्होंने यहाँ पे जब शुरुआत के दिन थे जीवी के, उस समय उन्होंने यहाँ पे जो भी कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस की सेवाएं भी दी है, और उसके बाद अभी पूरा समय जो है यहाँ पे वाड़ा तालुका विशेष करके, और यहाँ पे जो यूथ प्रचार है तो वहाँ पे जाते हैं और बहुत सारे बच्चों को युवाओं को वो प्रेरित करते हैं गीता भागवत के लिए। तो इस प्रकार से आज का जो उनका विषय है वो है श्रीमती राधा रानी की महिमा, तो इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि कल के दिन ही हमने राधाष्टमी मनाई। कितने लोगों को मालूम है राधाष्टमी कल थी करके? बहुत सारे, आपको मालूम था राधाष्टमी थी कल के? नहीं है। तो जन्माष्टमी हमने 7 तारीख को जन्माष्टमी मनाई, 7 अक्टूबर को, और कल राधाष्टमी थी, तो आज भी उसका इफेक्ट है। आपको दिख रहा है ना डेकोरेशन थोड़ा बहुत दिख रहा है? तो कल राधाष्टमी थी इसलिए डेकोरेशन वगैरह सुंदर यहाँ पे है, और विग्रहों को देखेंगे तो भी बहुत सुंदर विग्रह है। अभी भी आपकी तरफ देखें, उनकी तरफ देखिए तो स्माइल करते होंगे आपको, देखो अब एक बार। तो ये आज का विषय है, तो इसके बारे में चर्चा होगी। फिर 11 से 12 कथा होगी, 12 बजे राजभोग आरती होगी यहाँ पे, और 12:30 बजे सबके लिए प्रसाद की व्यवस्था होगी। ठीक है, ललिता भवन हॉल है हमारा, यहाँ पे प्रसाद की व्यवस्था होगी। उसके बाद हमारा वृंदावन फॉरेस्ट एरिया है, एक प्रति वृंदावन यहाँ पे हमने बनाया है, तो उसकी गाइडेड टूर होती है, तो वो भी आप अटेंड कर सकते हैं। तो 12:30 बजे, 12:30 बजे के बाद 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे से आधा आधा घंटे में टूर निकलती है। ठीक है, हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हम प्रभु जी से विनती करते हैं कि वो उनका कार्य जो प्रोग्राम है चालू करें। हरे कृष्ण।
जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, बिहारी जय गोपी जन बल्लभ गिरिवर धारी जय गोपी बल्लाबा गिरिवर धारी जय गोपी जन बल्लाबा गिरिवर धारी गोपी जन गिरिवर धारी जय यशोद नंदन ब्रज जन रंजन यशो नंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीराबन चारी तीराबन चारी जय राधा माधव गुंज बिहारी जय राधा माधव गुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा सब लोग बोलिए कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे रामा राम रामा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे
कलयुग पावन हरिनाम संकीर्तन की समवेत भक्त वृंद की ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा। तो अभी यहां पर हम कल राधाष्टमी था, बहुत ही पावन तिथि था, तो राधा रानी का जो महिमा के बारे में थोड़ा अभी चर्चा करेंगे। आप सबसे अनुरोध करता हूं, कृपा बैठ जाइए, माताएं जो हैं दाएं तरफ आ जाइए, प्रभु जी लोग बाएं तरफ बैठिए, और आप लोग थोड़ा आगे आगे आ जाइए, ताकि पास में बैठे रहेंगे तो थोड़ा हमको आनंद आएगा और अच्छे से हम बोल पाएंगे भगवान के बारे में। तो सूरत से जो ग्रुप आया है, सबको निवेदन करता हूँ, सेटल हो जाइए। क्लास के बाद आपका संडे फीस्ट का लंच प्रसादम का व्यवस्था हमने किया है, फिर आप क्लास के बाद हम आपका टूर लेके जाएंगे वृंदावन फॉरेस्ट के लिए। जो सूरत से ग्रुप आया है सब लोग बैठ जाइए, क्लास के बाद आपका टूर स्टार्ट होगा। हरे कृष्णा। तो आज का जो विषय है राधा रानी के बारे में थोड़ा कुछ चर्चा करेंगे। वैसे साल में बहुत ऐसा कम दिन मिलता है, हमेशा कृष्ण के बारे में बहुत चर्चा होता है, तो खास करके राधाष्टमी कल था, राधा रानी का जन्मदिन था, बहुत धूमधाम से कल यहाँ पर बड़ा फेस्टिवल हुआ, बहुत सारे लोग आए थे, हजार लोग आए थे। तो उसी का ही थोड़ा आगे पीछे हम चर्चा करते हैं, जो कि राधा रानी का जो ग्लोरीज है उसके बारे, महिमा के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, एक बार ये एक शास्त्र है, उसको बोलते हैं बृहद भागवत अमृत। उसमें सनातन गोस्वामी लिखते हैं कि सबसे बड़ा भक्त कौन है। तो एक बार नारद मुनि निकलते हैं एक मिशन में कि हमें खोज के निकालना है सबसे दुनिया का बड़ा व्यक्ति, बड़ा भक्त कौन है भगवान कृष्ण का। ठीक है, कौन निकले? नारद मुनि निकले। तो अभी ये पूरा जो सनातन गोस्वामी ये शास्त्र लिखते हैं, इसमें किस प्रकार नारद मुनि को पता चलता है कि दुनिया का सबसे बड़ा भगवान कृष्ण का भक्त कौन है। ठीक है, तो अभी जिस प्रकार नारद मुनि एक एक भक्त के पास जाते हैं और उनको क्या पता चलता है, उनका कहानी अभी हम देखेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी रहेगा। तो हमको ज्यादा तकलीफ कर देने का जरूरत है, नारद मुनि ऑलरेडी सब कुछ R&D कर दिया है, है? आप लोगों के लिए नारद मुनि पूरा रिसर्च करके उन्होंने निकाल दिया है कि भगवान का सबसे बड़ा भक्त कौन है। चलो अभी हम नारद मुनि का जो यात्रा है उस यात्रा में आगे बढ़ते हैं। तो नारद मुनि किन किन भक्तों के पास जाते हैं और पूछते हैं, और असली में अंततः नारद मुनि को क्या पता चलता है कि असली में भगवान कृष्ण का सबसे बड़ा भक्त कौन है, हैं? देखते हैं नारद मुनि क्या बोलते हैं। ठीक है, तो नारद मुनि अपने वीणा बजाते हुए सबसे पहले निकलते हैं और भगवान कृष्ण का सबसे बड़ा भक्त को ढूंढने के लिए निकलते हैं, और सीधा भारतवर्ष में आ जाते हैं। और भारतवर्ष में आते हैं, पहले तो जाते हैं नॉर्थ में जाते हैं, उत्तर भारत में जाते हैं, यूपी में जाते हैं, और यूपी में जाते हैं एक ब्राह्मण को देखते हैं कि ब्राह्मण क्या कर रहा होता है, शालिग्राम पूजा कर रहा होता है। तो उनको लगता है कि अरे इस ब्राह्मण से बड़ा भक्त कौन हो सकता है, हर रोज सुबह उड़ता है, स्नान करता है, शालिग्राम पूजा करता है, एक दिन भी फेल नहीं हुआ है, तो मुझे लगता है यही सबसे बड़ा भक्त है। तो जाके बोलता है, ब्राह्मण देव प्रणाम, मुझे लगता है कि भगवान कृष्ण का सबसे बड़ा भक्त आप हो। ब्राह्मण बोलते कि अरे मैं नहीं हूं। बोले अरे आप हर रोज पूजा करते हो, एक दिन भी आपका मिस नहीं हुआ, शालिग्राम पूजा करते हो, स्नान करते हो, गंगा में प्रयाग में वास करते हो, तीर्थ राज में वास करते हो, आपसे बड़ा कौन भक्त हो सकता है। ब्राह्मण बोलता है कि देखो एक चीज है, मैं तो शालिग्राम जी का पूजा करता हूं, देखिए यहां पर भी दर्शन करेंगे तो एक शालिग्राम शिला है। तो बोलते कि हम तो शालिग्राम जी का पूजा करते हैं, हमारा तो कभी कभी इच्छा होता है कि भगवान के विग्रहों का पूजा करने का, लेकिन मैं बस शालिग्राम शिला पूजा करता हूं। तो असली भक्त अगर आपको जानना है तो दक्षिण भारत में जाओ, और दक्षिण भारत में ये राजा को देखो, कितना सुंदर रूप से भगवान का, विष्णु का अर्च विग्रह को हर रोज पूजा करता है, मुझे लगता है मेरे से तो बड़ा भक्त वो है। तो नारद मुनि बोले क्या वो राजा? बोले ठीक है चलो राजा के पास जाते हैं। और फिर नारद मुनि कहां जाते हैं? राजा के पास जाते हैं और राजा को प्रणाम करते हैं दक्षिण भारत में जाके। बोले कि हमको तो लग रहा है सारा संसार का आप ही सबसे बड़ा महान भक्त हो भगवान कृष्ण का। तो नारद मुनि को बोलते हैं हम तो पूजा करते हैं भगवान विष्णु के विग्रहों को मंदिर में, लेकिन हमारा पूजा कहाँ ऐसा रहता है। अरे पूजा देखना है तो इंद्र का देखो, वो इंद्र जब भगवान विष्णु का पूजा करता है, यज्ञ करता है, तो सामने साक्षात भगवान विष्णु प्रकट हो जाते हैं, और वो जो भी भोग लगाता है तो भगवान विष्णु उसके सामने यज्ञ पुरुष प्रकट होकर खाते हैं भोग। मेरे सामने तो कभी विग्रह से भगवान प्रकट नहीं हुए, मैं पूजा करता हूं लेकिन साक्षात कभी प्रकट नहीं हुए, मुझे तो लगता है इंद्र मेरे से बड़ा भक्त है। तो नारद मुनि बोले क्या इंद्र बड़ा है? तो अभी मुझे स्वर्ग जाना पड़ेगा फिर। बोले ठीक है जाके देखते हैं स्वर्ग में। तो सीधा अभी नारद मुनि को एक ऐसा उनको ब्लेसिंग मिला है कि ये 14 लोक में कौन से भी लोग जा सकते हैं। नारद मुनि उनको कहां पर पासपोर्ट चेकिंग नहीं होता है, वीजा चेकिंग नहीं होता है, कौन से भी लोक में जा सकते हैं और कितना दिन भी रह सकते हैं, और नारद मुनि को पूरा इंटरनेशनल कर, पूरा इंटर प्लानिटरी वीजा मिला है, पास मिला है। तो सीधा पृथ्वी लोक से कहां जाते हैं? स्वर्ग लोग जाते हैं। और स्वर्ग लोग जाके इंद्र को बोलते हैं, अरे इंद्र महाराज प्रणाम, अंतिम तो आपको मिल गया, मुझे भगवान विष्णु का सबसे बड़ा भक्त तो आप ही हो। तो इंद्र बोलते क्या, अरे मैं क्या भक्त हूं, बोलते अरे मैं तो बीच बीच में भगवान कृष्ण के साथ झगड़ा भी करता हूं। अभी हाल ही में मेरा झगड़ा हुआ है वृंदावन में। कौन सा झगड़ा हुआ है? गोवर्धन धारण लीला हुआ है ना, सब लोग अच्छा खासा मेरा पूजा कर रहे थे, कृष्ण बोले कि इंद्र का पूजा नहीं करने का, गोवर्धन महाराज का पूजा करने का। तो नंद बाबा बोलते क्यों नहीं करने का, इतना सालों से पूजा चलते आ रहा है। कृष्ण बोलते कह रहे उसको तो मैंने सैलरी दे के रखा है, तंखा मिलता है हर महीना का, अलग से पूजा करने का क्या जरूरत है। तो इंद्र पूजा बंद कर देते हैं। तो इसको बहुत गुस्सा आता है, मेरा पूजा बंद कर दिया। बोला कि मैं उस कृष्ण भगवान को मारने के लिए प्रयास किया था, कितना नालायक हूं मैं, देखो अपना भगवान अपना आराध्य देव को मैं पहचान नहीं पाया, मैं कैसा भक्त हूं। तो नारद ने बोला लेकिन वो तो बोल रहे थे कि आप पूजा करते हैं तो भगवान विष्णु प्रकट तो होते हैं, क्योंकि मैं स्वर्ग का राजा हूं, देवताओं का राजा हूं तो प्रकट होएंगे, लेकिन मैं इतना बड़ा भक्त नहीं हूं। अरे वो तो छोड़ो, भगवान जब ऊपर आते हैं सत्यभामा के साथ, उसके लिए एक पारिजात वृक्ष लेके जा रहे थे, वो भी मैं सहन नहीं कर पाया और भगवान के साथ आक्रमण किया कि नहीं लेके जा सकते हो पारिजात वृक्ष, और फिर कृष्ण ने मुझे परास्त किया और लेके गए। तो थोड़ा मैं थोड़ा आसक्ति रहता हूँ, समय समय पर भगवान के साथ भी झगड़ा कर लेता हूँ, इसलिए मुझे नहीं लगता मैं सबसे बड़ा भक्त हूँ। तो नारद मुनि बोले क्या और आपने कन्फ्यूजन में डाल दिया मुझे, तो सबसे महान भक्त कौन है आपके हिसाब से? बोले हमें क्या, देखो जब भी कुछ प्रॉब्लम होता है देवताओं को, 33 कोटि देवताओं को जब भी कुछ प्रॉब्लम होता है, तकलीफ होता है ना, हम लोग किधर जाते हैं? ब्रह्मा जी के पास, और वो सबका निवारण कर देते हैं। मैंने भी जब गलती किया, कृष्ण को मारने के लिए प्रयास किया, 7 दिन 7 रात बारिश किया और मूसलाधार बारिश किया, सबको मारने वाला था, लेकिन 7 दिन में मेरा पानी का पूरा ऊपर का रिजर्वर टैंक खत्म हो गया, लेकिन नीचे गया तो एक धूल भी नहीं गिरा है गोवर्धन से। और उस समय पर मुझे पता चला कि बहुत बड़ा गलती हो गया, तब तो मैं ब्रह्मा जी के पास गया था और ब्रह्मा जी ने पूरा मामला को सेटल कर दिया था। तो ब्रह्मा जी मुझे लगता है भगवान का सबसे बड़ा भक्त रहेंगे, क्योंकि हमेशा ध्यान में बैठे रहते हैं कमल के फूल के ऊपर और भगवान के ऊपर ध्यान करते रहते हैं। तो नारद मुनि बोले ठीक है, अभी स्वर्ग लोक से ब्रह्म लोक जाते हैं, उनके लिए थोड़ी टिकट लगता है, सीधा नारायण नारायण करते सीधा ब्रह्म लोक चले गए। और ब्रह्म लोक जाके बोले ब्रह्मा जी आखिर में मिल गया मुझे भगवान कृष्ण का सबसे बड़ा भक्त। तो ब्रह्मा जी बोले क्या मैं सबसे बड़ा भक्त? नहीं 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 मैं सबसे बड़ा भक्त नहीं हूँ। अरे आपसे बड़ा और कौन है, 14 लोक में से आप ही तो सबसे टॉप में बैठे हो और सब नीचे हैं, तो आप ही सबसे बड़ा भक्त हो ना। ब्रह्मा जी बोलते हैं अरे मैं क्या बोलूं, मैं ऐसा ऐसा काम करता हूँ अभी मत पूछो, कोई भी आता है मेरा तपस्या करता है और मैं वरदान दे देता हूँ, है? और फिर वरदान मिलने के बाद पूरा संसार में नाक में दम करते रखते हैं, फिर भगवान विष्णु को प्रकट लेना होना पड़ता है उसको मारने के लिए। अभी हाल ही में हिरण्यकश्यप को वरदान दिया था देखो, तो उसके लिए भगवान विष्णु को नरसिंह रूप लेना पड़ा, सब मेरे लिए ना, खाली खाली मैं तकलीफ देता हूँ भगवान विष्णु को। और फिर उसको पहला ओपन हार्ट सर्जरी किया फिर, और फिर मुझे ऐसा देख रहे थे, तो बोला मेरा दूसरा तो नहीं होगा, तो मैं बहुत गड़बड़ गड़बड़ करते रहता हूँ, शक्ति है मेरे पास लेकिन जो भी मेरा पूजा करता है राक्षस में कुछ ना कुछ दे देता हूँ उनको, तो इसलिए थोड़ा मैं भी भगवान का इच्छा को समझ नहीं पाता हूँ। तो बोला अच्छा, अरे वो तो छोड़ो, भगवान खुद जब वृंदावन में लीला कर रहे थे तो भगवान को मैं पहचान नहीं पाया, सब लोग बोल रहे थे कि कृष्ण भगवान है कृष्ण भगवान है, तो मैं सत्य लोक से नीचे आके देखा तो सब लोग बैठे हैं और सब लोग सब प्रभु जी लोग तो आगे आगे आ जाइए, तो लोग जो पीछे से दर्शन करके बैठेंगे, पीछे बैठने के लिए जगह होगा तो पीछे बैठे हैं और लोग आगे आ जाइए, तो जो पीछे परिक्रमा करेंगे पीछे बैठ सकते हैं, और थोड़ा रास्ता छोड़िए माता जी लोग को जाने के लिए उधर से, तो पीछे के लोग बेसिकली आगे आ जाइए। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं अरे मैं जब भगवान कृष्ण जब वृंदावन में लीला कर रहे थे, मैं जब ऊपर से नीचे गया तो मैंने देखा कि एक कोई खा रहा है समोसा और झूठा समोसा भगवान के मुंह में प्रवेश कर रहा है और भगवान खा रहे हैं, भगवान अपना झूठा दूसरे को खिला रहे हैं, तो मैं पूरा भ्रमित हो गया। मैं बोला ये कैसा भगवान है, मैं तो यज्ञ करता हूँ पूरा सब कुछ शुद्ध रहता है, वहां पर मैं ओम स्वाहा करके अर्पण करता हूँ तो भगवान ग्रहण करते हैं, ये झूठा खा रहे हैं, तो मेरा थोड़ा डाउट हो गया। और मैंने तो बहुत बड़ा गलती किया, मैंने क्या किया, मैंने तो सभी जितने गोप थे सबको चुरा के लेके गया। तो इंद्र ने तो जब बारिश किया था जितने सारे ब्रजवासी थे एक जगह पर आ गए, मैंने सबको दूर ले लिया, इसलिए भगवान मेरे ऊपर ज्यादा नाराज थे। तो मैं ऐसा बड़ा बड़ा गलती किया हूं, अभी मैं क्या बोलूं, मैं बड़ा भक्त नहीं हूं। तो बोलते नारद मुनि, बोले अभी आप सत्य लोक में आ गया, सबसे बड़ा तो आपका ही लोक है, आप बोल रहे हैं कि सबसे बड़ा भक्त नहीं है, तो कौन है सबसे बड़ा भक्त? तो ब्रह्मा जी बोलते कि एक व्यक्ति है जो कि मेरे से भी बड़ा है और भगवान कृष्ण का सबसे बड़ा भक्त है। नारद बोले कौन है बताइए, कौन है? बोले अरे वो तो वैष्णव नाम यथा शंभू है, वो वैष्णवों से परम है और हमेशा लीन में रहते, समाधि में रहते हैं और अपने आराध्य देव भगवान को हमेशा भजन में समाधि में रहते हैं, मैं तो इधर उधर घूमते रहता हूं, वो सबसे बड़ा भक्त है। तो नारद मुनि बोला अभी मुझे कैलाश जाना पड़ेगा, अभी मुझे घुमा रहे हैं आप सारा ब्रह्मांड में चारों तरफ। ठीक है, नारद मुनि बोले ठीक है, जाके उनको भी मिल लेते हैं। और घूमते घूमते कहां पर आ जाते हैं, कैलाश में आ जाते हैं। बोले महादेव कृपया करके आपने आंख थोड़ा खोलिए और मेरा प्रार्थना थोड़ा सुनिए। शिव जी बोलते क्या हो गया नारद मुनि? बोले आप ही भगवान कृष्ण के सबसे बड़े भक्त हो। तो शिव जी बोलते कि अरे मैं नहीं हूं सबसे बड़ा भक्त। आप नहीं है फिर कौन है? आप तो हमेशा समाधि में रहते हैं हमेशा। बोला अरे क्या, मैं रहता हूं समाधि में और आप मुक्ति भी दे सकते हैं, शिव जी मुक्ति भी दे सकते हैं, इसलिए जब आप जाएंगे वाराणसी में जाएंगे और वहां पर जिनका भी दशाश्वमेध घाट में जब उनका जब जलाते हैं शरीर को, बोलते हैं कि वहां पर शिव जी आके सबके कान में क्या बोलते हैं, राम 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 बोलते हैं शिव जी, तो जिसके कारण व्यक्ति को मोक्ष मिल जाता है। तो मोक्ष मिलने के लिए राम राम बोलना पड़ेगा, लेकिन शिव जी बोलते मेरा भक्त है तो मैं उसको मोक्ष दे देता हूं, तो मरते मरते उसके कान में राम राम बोलते हैं। इसलिए वहां पर जाएंगे तो जैसे आप प्रसाद के लिए लाइन में खड़े रहते हैं ना, हम लास्ट ईयर वाराणसी यात्रा गए थे, वहां पर लोग डेड बॉडी लेके लाइन में खड़े रहते हैं, एक के बाद जलाते रहते हैं। बोलते कि 24 घंटा वहां पर चिता जलते रहता है किसी ना किसी का। तो ये वर्ल्ड का सबसे फेमस है शमशान घाट वाराणसी का, जहाँ मणिकर्णी का घाट, जहां पर शिवजी जब तांडव नृत्य कर रहे थे उनका मणि गिरा था, इसलिए उसको बोलते हैं मणिकर्णी का घाट, कर्ण से मणि गिरा था इसलिए मणिकर्णी का घाट। तो शिवजी बोले मैं सबसे बड़ा भक्त नहीं हूं, देखो मैं कैसा रहता हूँ, मेरा शरीर देखो, यहाँ शमशान डालता हूँ, खोपड़ी का माला पहना हूँ, सांप पकड़ा हूँ, क्या देख रहे हो, ये मैं थोड़ा लग रहा है भक्त भगवान का, वो तो छोड़ो, और कभी कभी मैं भी कृष्ण के साथ झगड़ा करता हूँ। तो बोले आप कब झगड़ा किए? अरे आप पता नहीं, मेरे सब भक्त सब राक्षस भूत प्रेत रहते हैं और कोई भी आके मेरा तपस्या करता है मैं कुछ भी वरदान दे देता हूँ, इसलिए तो मुझे भोले बाबा बोलते हैं, आसानी से मैं वरदान दे देता हूँ, और मेरा शक्ति लेते हैं और मेरा शक्ति लेके विष्णु के साथ झगड़ा करते हैं मेरे भगवान के साथ, और फिर बीच में मुझे फंसा देते हैं, फिर मुझे उनको सपोर्ट करना पड़ता है क्योंकि मैंने आशीर्वाद दिया है। बोला अच्छा, हाँ देखो ना अनिरुद्ध का, देखो अनिरुद्ध को जब उषा ने किडनैप करके ली थी, फिर अनिरुद्ध का उषा का पिताजी वाणासुर था जो कि मेरा भक्त था, और जब मैंने उसका आशीर्वाद दिया था हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूंगा, और ये युद्ध किसके साथ करता है, कृष्ण के साथ, क्योंकि अनिरुद्ध कृष्ण का पोता था, तो दोनों के साथ घमासान युद्ध होता है और ये वाणासुर बुला रहे प्रभु प्रभु मदद करो, तो मुझे उसका सपोर्ट करना पड़ा, मैं उतरा युद्ध में और सामने कृष्ण और मेरा युद्ध चालू हो गया, ये तो साइड में गया मैं सामने आ गया। तो सोचो इसके लिए मुझे भगवान कृष्ण के साथ युद्ध करना पड़ा, वो तो भगवान का भगवता था कि उन्होंने मुझे निद्रा अस्त्र से सुला दिया, नहीं तो मेरा उधर ही कुछ हो जाता था। भगवान बोले अभी ये भी भक्त है, भगवान उसको कैसे मारे? तो भगवान ने क्या किया, निद्रा देवी बहुत पावरफुल है, कथा में जब चालू होता है तो निद्रा बोलते हैं कि जहां भागवत कथा होता है वहां निद्रा देवी पीछे से आके बैठ जाती है एक्स्ट्रा कृपा देने के लिए। तो वही परीक्षा होता है कि असली में कौन भगवान का भजन कीर्तन में लीन है, नहीं तो बाकी सबको निद्रा देवी अपना कृपा देती है। तो खास करके जैसे ही जय राधा माधव चालू हो जाता है सब लोग अपने अपने स्थान ले लेते हैं। तो निद्रा देवी जब जिसके बार प्रहार करती है ना बहुत पावरफुल है, बड़े बड़े लोग भी नम्र हो जाते हैं। तो कृष्ण बोले कि अभी शिव जी के साथ युद्ध कैसे करूं, इनको तो परास्त करना थोड़ा मुश्किल है। तो फिर कृष्ण किसको बुलाते हैं, निद्रा देवी को बोलते, बोले आप थोड़ा कृपा दो इनको, नहीं तो थोड़ा अच्छा नहीं होगा। तो निद्रा देवी का जो अस्त्र कृष्ण छोड़ते हैं शिव जी के ऊपर, जैसे ही निद्रा देवी प्रहार होती है शिव बोले बैठते सो जाते हैं, और उसी टाइम में वाणासुर का उसका हजार हाथ था, क्योंकि हजार हाथ से मृदंग बजाता शिवजी जब तांडव नृत्य कर रहे थे तो शिवजी को प्रसन्न करते, बोले कौन बजा रहा था मृदंग। कभी कभी कीर्तन अच्छा मृदंग बजता है तो कीर्तन उड़ता है ना, फिर हम देखते हैं कौन बजा रहा है मृदंग, थोड़ा एक्स्ट्रा ब्लेसिंग मिलता है उसको। तो शिवजी भी देखा आज तांडव नृत्य में थोड़ा मजा आ गया, कौन बजा रहा था मृदंग, ये वाणासुर बजा रहे थे, हजार हाथ है ना, हजार मृदंग बजा रहा था, तो एक्स्ट्रा इफेक्ट था। तो शिवजी ने उसको वरदान दिया कि हम आपको हमेशा सदैव रक्षा करेंगे। तो इसलिए वाणासुर को इतना कॉन्फिडेंस था, कृष्ण के साथ को भी अटैक किया था। तो उसी समय कृष्ण ने क्या किया, एक हाथ को काट दिया, एक एक हाथ करके उसका हजार हाथ को काट दिया। अंत में उसका गर्दन काटने वाले थे तब तक शिवजी का नींद खुल जाता है, बोला अरे प्रभु मत मारो मत मारो, उसको आशीर्वाद दिया है उसको, क्या होगा मेरा आशीर्वाद। तो कृष्ण बोले ठीक है, ऐसा कैसा आशीर्वाद क्यों देते हो राक्षस लोग को। तो कृष्ण ने बस वाणासुर का जीवन को छोड़ दिया, बाकी उसका हजार हाथ उसका जो शक्ति था उसको काट दिया। तो शिवजी बोले ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है लीला कृष्ण के साथ। तो कैसे आप बोलोगे मैं महान भक्त हूं, अगर महान भक्त होता तो ऐसा ऐसा मैं वरदान थोड़ी देता राक्षस लोग को। तो नारद मुनि बोलते अरे मैं घूम लिया सारा संसार, अभी कौन बचा, अभी कौन है। बोले एक व्यक्ति है। शिवजी बोलते, तो नारद बोले कौन है। तो शिव जी बोले देखो मैं भगवान को इतना तकलीफ देता हूं, लेकिन एक भक्ति मेरा नजर में दिख रहा है कि वो सबसे महान भक्त है। तो नारद बोले कौन है बताओ। देखो उसका नाम क्या है पता है, गेस कीजिए। वो है, हम हर रोज सुबह आरती गाते हैं, है? भक्त प्रहलाद महाराज। बोले कि अरे प्रहलाद महाराज जो है ना वो बहुत जबरदस्त भक्त हैं। अरे 5 साल के आयु में भगवान का भक्ति, 5 साल क्या, मां के गर्भ में भक्ति चालू कर दिया उसने। कयादु के गर्भ में जब था प्रहलाद तब नारद मुनि का कथा सुनकर उन्होंने भक्ति चालू कर दिया ना, जन्म से ही भक्त है। बोलते ना कभी कभी प्रभु जी मेरा बेटा इनबॉर्न डिवोटी है, जन्म से डिवोटी। तो मम्मी पापा को बहुत गर्व लगता है कि बचपन से हमारा संतान भक्त है। तो प्रहलाद को देखो, कौमारम आचरते प्राज्ञा, 5 साल से भक्ति करना चालू कर दिया। अरे उसके जीवन में कितना बाधाएं आया, कितना विघ्न आया, फिर भी भक्ति छोड़ा नहीं। क्या क्या नहीं क्या, हिरण्यकश्यपु सांप के गत्र में, हम दूर से 10 फुट दूर से ही सांप देख के हमारा शरीर में अष्टकंप अष्टसात्विक विकार आ जाता है। उसको सांप का गत्र में फेंक दिया। सोचो जो जो सांप का नाम सुने रहेंगे, कोबरा, क्रेट, रसल वाइपर, सब उसके शरीर के ऊपर क्रॉल कर रहे थे, फिर भी वो भगवान का भजन पूरा ध्यान था समाधि में। मैं तो एक चुपचाप बैठ के समाधि करता हूँ सांप को गले में लेके, वो तो सांप घूम रहा है उसका शरीर में, फिर भी उसका भजन समाधि नहीं टूटा। 5 साल का बालक, तो पावर है इसमें। तो बोले आप उसके पास जाओ, वो असली भक्त है। तो नारद मुनि बोलते ठीक है, जाके प्रहलाद को मिल लेते हैं। तो नारद मुनि सीधा कहां पर आते हैं, प्रहलाद के पास आते हैं। प्रहलाद को बोलते हैं अरे प्रहलाद तू तो भगवान का सबसे बड़ा भक्त निकला। बोले अरे क्या बोल रहे नारद मुनि, मैं कैसा भक्त हूं, भगवान किसके घर में आते हैं तो हम अतिथि सत्कार करते हैं ना, माला पहनाते हैं, उनका पूजा करते हैं, आरती उतारते हैं, और मेरे घर में जब स्वयं भगवान विष्णु नरसिंह देव का रूप में प्रकट होते हैं, मैंने कुछ भी नहीं किया उनका, क्या क्या मैंने, ना पैर धोया ना आरती उठाया, उल्टा सब लोग देख के भाग रहे थे। ब्रह्मा जी बोले अरे लक्ष्मी आप थोड़ा जाओ अपने पतिदेव को शांत करो। लक्ष्मी बोलती अरे ऐसा तो मेरे पतिदेव का रूप मैंने कभी देखा नहीं था, गुस्सा होते कभी कभी लेकिन ऐसा रूप मैंने कभी नहीं देखा था, मैं नहीं जाऊंगी, मेरा कुछ हो जाएगा तो ओपन हार्ट दूसरा मेरा हो जाएगा। तो लक्ष्मी बोलती कि ऐसा रूप मैंने कभी नहीं देखा, मैं पास में नहीं जाने वाली हूं। तो ब्रह्मा जी बोले कि कौन शांत करेगा, इतना बड़ा बड़ा गर्जन कर रहे तब किसको भेजते हैं। प्रहलाद बोलते बेटा प्रहलाद तेरे लिए ही इन्होंने प्रकट लिया है ना, तो तू ही जाके शांत कर। तो बोलते कि मैं जब गया तो मेरे हाथ में आरती भी नहीं था, एक फूल का तो माला रहना चाहिए गले में डालने के लिए, वो भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो भगवान इतना क्रोधित थे, मेरे पिताजी का ही सब जो क्या बोलते हैं जो अंथड़िया रहता है उसको निकाल के माला करके पहन लिया, क्योंकि मैंने तो डाला नहीं कुछ, अभी भगवान आए तो पहनेंगे कुछ तो माला है। तो मेरे पिताजी का सब जितना सारा इंटेस्टाइन अंथड़िया सब निकाल के माला करके पहन लिया। तो सोचिए कैसा मैं बदनसीब व्यक्ति हूँ, भगवान का सत्कार भी ठीक से नहीं कर पाया, आरती भी ठीक से नहीं कर पाया, तो मैं कैसा भक्त हूँ, आप क्या बोल रहे हैं, और मैं तो 5 साल का। अरे जो भी सीखा है आपसे ही सीखा है नारद मुनि, आपने ही आके मेरे माता के गर्भ में जब मैं था आपने आके कयादु माता का सब कुछ सुनाया, और आपसे मैंने थोड़ा बहुत कुछ सीखा जो बोल रहा हूं, और मैं क्या भक्त हूं आपके सामने, आप तो मेरा गुरु हो। नारद मुनि, अरे क्या बोल रहा है, मैं वो सब ठीक है, सबसे बड़ा भक्त कौन है बोलो, तुमसे बड़ा भक्त कौन है बोलो। तो प्रहलाद बोलते कि मुझे लगता है ना मेरे से बड़ा भक्त हनुमान जी। हनुमान जी? हाँ, हनुमान जी को देखो, हमेशा 24 घंटा राम जी का सेवा में लगे रहते हैं नॉन स्टॉप। मैंने तो कुछ सेवा भी नहीं करवा, उल्टा भगवान आके मेरा सेवा किया नरसिंह देव, मैंने थोड़ी उनका कुछ सेवा किया। लेकिन हनुमान जी को देखो, वो तो राम जी का हमेशा सेवा में लगे रहते हैं, दिन भर जंगल में इधर उधर घूम के सेवा ही करते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि हनुमान जी सबसे बड़ा भक्त हैं। तो ठीक है, तो नारद मुनि सीधा नारायण करते करते कहां पहुंच गए, हनुमान जी के पास पहुंच गए। हनुमान जी को बोला, अरे हनुमान जी आखिरी में तो मिल गया भगवान का सबसे बड़ा भक्त, प्रणाम। हनुमान जी बोले, क्या मैं और भगवान का बड़ा भक्त? नहीं नहीं, मैं तो तुच्छ भक्त हूं, मैं कैसा भक्त हूं, भगवान को जंगल में थोड़ा सेवा कर रहा था और फिर भगवान अयोध्या में आए तो सेवा करने का मौका ही नहीं मिला मुझे, इतने बड़े बड़े नौकर चाकर सब घूम गए, घर गए भगवान रामचंद्र को, कहां मैंने सेवा किया। और वो तो छोड़ो, और हमेशा लोगों को भी बहुत परेशान में करता रहता था, अरे मैं बड़ा भक्त नहीं हूं। अरे बड़ा भक्त कौन है पता है आपको? बोलते कि सबसे बड़ा भक्त तो कौन है, पांडव है। पांच पांडव को देखो, भगवान ने आधा टाइम तो द्वारका छोड़ के भगवान हस्तिनापुर में रहते थे और हस्तिनापुर में पांच पांडवों का सेवा करते थे। तो ये पांच पांडव इतने महान भक्त हैं कि वहां पर 16,108 रानियां को भगवान छोड़ देते थे और हस्तिनापुर में ये पांच पांडव के साथ रहते थे। तो कभी कभी रानियां तंग हो जाते थे, अरे घर भगवान का द्वारका है ना हस्तिनापुर है, आधा से आधा दिन तो हस्तिनापुर में भगवान रहते हैं। तो ये पांच पांडव देखो भगवान को इतना सुंदर भक्ति करते थे, कोई अपना घर बार छोड़ के दूर रहना छोटा चीज नहीं है। और भगवान के एक दो पत्नी नहीं थे, 16,108 पत्नियां थे, सबको छोड़ देते थे और हस्तिनापुर में रहते थे महीना महीना। क्यों? खाली पांच पांडव का देखभाल सेवा करने के लिए। सोचो ये पांच पांडव कितने महान रहेंगे। तो पॉइंट तो आपका बहुत अच्छा है, चलो पांच पांडव से मिल लेते हैं। तो नारद मुनि पांच पांडव को जाके मिलते हैं। पांच पांडव बोलते कि अरे क्या भगवान, हमारे लिए भगवान को कितना मेहनत करना पड़ा, क्या क्या देखना पड़ा, महाभारत का युद्ध हमको हमारे लिए देखना पड़ा, और तो छोड़ो भगवान ने इतना सारा युद्ध किए ताकि हमको राजा करने के लिए, युधिष्ठिर महाराज को राजा करने के लिए। अरे हम इतना बड़ा भक्त नहीं, असली भक्त कौन है पता है? असली भक्त तो यदुवंशी जो हैं, महाराज उग्रसेन है, जिनके वंशज में भगवान कृष्ण खुद जन्म लिए हैं। अरे उग्रसेन इतना बड़ा भक्त है कि भगवान ने तो कंस को मार के जो भगवान का जो अभी किसी कोई अगर किसी को मारता है तो उसका साम्राज्य उसका हो जाता है ना, तो एक दृष्टिकोण से देखेंगे तो पूरा मथुरा कृष्ण का था, लेकिन फिर भी भगवान ने लिया नहीं, भगवान ने उग्रसेन को राजा बनाया। सोचो भगवान उग्रसेन महाराज को कितना प्रेम करते थे। हम देखते हैं कि लोग एक दूसरे को मार के राजा बन जाते हैं, बेटा बाप का गला काट के राजा बन जाता है, लेकिन यहाँ पर भगवान ने मारा कंस को, खुद अपने हाथों से मारा और राजा होने का पूरा उनके पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी वो राजा नहीं बनते और उग्रसेन महाराज को राजा करते हैं। तो कितना बड़ा भक्त है उग्रसेन महाराज, मुझे लगता है उग्रसेन महाराज सबसे बड़ा भक्त है। तो नारद मुनि बोलते हैं ठीक है, जाके उग्रसेन महाराज को मिल जाते हैं। तो उग्रसेन महाराज बोलते हैं कि हे महाराज, आप ही यदुवंश के जो राजा हो सबसे बड़ा भक्त हैं। तो उग्रसेन ने बोलते कि अरे नहीं नहीं नहीं, हम बड़ा भक्त नहीं है। फिर कौन बड़ा भक्त है? अरे ये सब फॉर्मेलिटी है, भगवान का जो सबसे बड़ा भक्त कौन है पता है? जो कि वृंदावन में रहते हैं ब्रजवासी। अरे भगवान 10 साल वृंदावन में रह के कितना सुंदर सुंदर लीला किया है, ये ब्रजवासी भगवान के इतने सुंदर भक्त है। वो ब्रजवासियों को बचाने के लिए भगवान द्वारका चले गए, क्योंकि जब राक्षस लोग मथुरा में आक्रमण करेंगे तो ब्रजवासियों का जीवन के ऊपर संकट है, इसलिए भगवान द्वारका बना दिया, दूर चले गए। कभी कभी ऐसा होता है ना, जो कीमती चीज रहते हैं आप उसको थोड़ा आराम से रखते हैं, ध्यान से संभाल के रखते हैं। तो भगवान वृंदावन को नहीं चाहते थे कि कोई भी राक्षस वृंदावन में प्रवेश करे, इसलिए भगवान दूर द्वारका चले गए। द्वारका, द्वार कहाँ पे है? द्वारका ऐसा एक नगरी बना है जहां पर कोई प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए उग्रसेन बोलते हैं कि अरे सबसे बड़े भक्त तो ब्रजवासी हैं, आप ब्रजवासियों को मिलो। तो अभी पूरा नारद मुनि का टर्न होता है, यू टर्न होता है, और किधर जाते हैं? वृंदावन जाते हैं। और वृंदावन में जाके है, वृंदावन से ब्रजवासी से पहले बोलते हैं कि उद्धव जी सबसे बड़ा भक्त हैं, क्योंकि उद्धव जी वृंदावन में ब्रजवासियों के साथ वास किए थे। उग्रसेन बोले कि मैं कभी वृंदावन गया नहीं था, मैं कभी भी गया नहीं वृंदावन, मैं मथुरा में राजा हूं, लेकिन हमारा यदुवंश में उद्धव एक ऐसा व्यक्ति है जो कि वृंदावन में गया है। तो यदुवंशी भी है, वृंदावन भी गया है, ब्रजवास भी किया है और यदुवंशी भी है। तो मुझे लगता है कि उद्धव सबसे भगवान का अच्छा भक्त है और हमेशा भगवान के साथ ही रहता है। भगवान जो माला पहना, भगवान जो कपड़ा पहने, सब कुछ वो महा कपड़ा पहले वही पहनता है और कृष्ण के तरह ही दिखता है, तो वही सबसे बड़ा भक्त रहेगा। तो सीधा उद्धव के पास चले जाते हैं, बोले उद्धव महाराज आप ही भगवान कृष्ण के सबसे बड़े भक्त हो। उद्धव बोलते हैं ना 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 ना, मैं बड़ा भक्त नहीं, मैं सोच रहा था बड़ा भक्त, मैं सोच रहा था कि मैं बृहस्पति का शिष्य हूं और सबसे बड़ा भक्त मैं ही हूं, मुझे ऐसा लग रहा था, लेकिन मेरा सब भ्रम टूट के चूर चूर हो गया। कब हुआ? जब मैं वृंदावन गया, जब मैं वृंदावन गया, कृष्ण ने बोले कि थोड़ा गोपियों को थोड़ा खबर दे दो है कि रो रहे हैं, और मैं बहुत गर्वित होकर गया, एक बड़ा लेटर लेके गया, बृहस्पति का शिष्य हूं, सभी गोपियों को ज्ञान दूंगा और उनको शांत कर दूंगा, वो सोच के मैं वृंदावन गया था, आईआईटी पास आउट हूं मैं सोच के। लेकिन जब वृंदावन में गया, मेरा आईआईटी का नॉलेज जो भी पढ़ा था बृहस्पति टेक्नोलॉजी से, सब फेल हो गया उनके सामने, क्योंकि उनका जो उनको मैं क्या बोलूं, रोना क्यों बंद करना। कोई व्यक्ति अगर रोता है भगवान कृष्ण के लिए तो ये भक्ति का चरम सीमा है। भक्ति का जो प्रेम है, भाव प्रेम है भगवान के लिए, विरह में रोना है, और गोपियां तो वही कर रहे थे, उनको मैं किस दृष्टिकोण से मना करूं रोने के लिए। तो मेरा सब ज्ञान नॉलेज जो भी पढ़ा था सब फेल हो गया उनके सामने, कुछ काम नहीं गया, नम्र बन गया मैं। और उद्धव बोलते कि मैं तो प्रार्थना किया कि मैं एक गुलम लता बन जाऊं वृंदावन में, ताकि गोपियों का पैरों का धूल, ब्रजवासियों का पैरों का धूल मैं अपने सर के ऊपर धारण कर पाऊं। इसलिए मुझे लगता है कि ब्रजवासी जो हैं, गोप गोपी गायें, ये सब भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं। तो नारद मुनि सीधा ब्रजवासी अभी जाते हैं, वृंदावन पहुंच जाते हैं, और वृंदावन में बोलते हैं कि ब्रजवासियों को बोलते हैं कि अंत में हमको पता चल गया कि सबसे बड़ा भक्त कौन है, आप सब कृष्ण के सबसे बड़े भक्त हो। तो ब्रजवासी बोले कि नहीं नहीं, हम सबसे बड़े भक्त नहीं। अरे और कौन बचा है? बोले देखो हम तो सेवा करते हैं, सब करते हैं, ठीक है, लेकिन असली में सबसे बड़ा भक्त कौन है बताए? ये गोपियां सबसे बड़े भक्त हैं। बोले क्यों? बोले देखो गोप बोलते हैं हम खेलते हैं कूदते हैं और भगवान का भजन करते हैं, ये गोपियां जो है भगवान को प्राप्त करने के लिए सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया। जब रात के 12 बजे भगवान बांसुरी बजाते हैं और सब गोपियां अपना घर बार सब छोड़ के जंगल में आते हैं भगवान कृष्ण को मिलने के लिए, कृष्ण बोलते अरे क्या किया आपने, क्यों आए यहाँ पर रात को 12 बजे, ऐसा थोड़ी आना चाहिए। तो गोपियां बोलते हैं प्रभु आपने बुलाया तो हमने आया। तो भगवान बहुत परीक्षा लेते हैं, बोले कि अरे आपने घर छोड़ दिया, सबका क्या होगा सोसाइटी में, आपका लोग क्या बोलेंगे। तो देखिए कोई एक विवाहिता नारी अगर अपना फैमिली सब कुछ छोड़ के जाती है, मतलब उसके लिए सबसे बड़ा चीज है। और ये गोपी जो रहते थे सब कुछ उन्होंने न्योछावर कर दिया भगवान कृष्ण का प्रेम को प्राप्त करने के लिए। तो सब ब्रजवासी बोलते हैं कि गोपियां सबसे बड़ा महान भक्त है, उनके जैसा हम नहीं हो सकते, तो आप कृपा करके गोपियों के पास जाइए। तो नारद मुनि बोले चलो अभी थोड़ा कुछ तो लग रहा है। तो नारद मुनि सीधा वृंदावन में गोपियों के पास जाते हैं, बोलते कि अरे असली में तो आप सब सबसे बड़े भक्त हो भगवान कृष्ण के। तो गोपियां बोले नहीं नहीं नहीं, हम सब बड़े भक्त नहीं। बोले अरे और कौन बच्चे बड़े भक्त? हम बड़े भक्त नहीं है। बोले कौन है बड़े भक्त? अरे हम तो इतने सारे हैं, सेवा करते हैं, जो भी सेवा मिल गया थोड़ा बहुत सेवा कर लेते हैं भगवान का। असली में सबसे बड़े भक्त कौन है पता है? वो हमारे जो अष्ट सखियां हैं ना, आप कोई मायापुर जाएंगे तो राधा मदन मोहन राधा जो रहते हैं उनके बाजू में अष्ट सखियां रहते हैं, इधर चार राधा माधव के बाजू में। तो ये जो 8 सखियां है ना, ये सबसे बड़े भक्त हैं। ये तो उनका जीवन में और कोई लक्ष्य ही नहीं है, 24 घंटा हमेशा राधा रानी क्या कर रहे हैं, उनका कैमरा का फोकस उनके ऊपर ही रहता है, किधर क्या कर रही, और राधा रानी कुछ सोचने से पहले ये लोग सेवा कर लेते हैं। हमको तो बोलना पड़ता है कि फूल लेके आओ, तो हम फूल लेके आते हैं, लेकिन ये जो आठ सखियां हैं जिनको अष्ट सखियां बोलते हैं, ललिता, विशाखा, तुंगभद्रा, ये सब चंपक लता, ये सब चित्रा, ये सब जो आठ सखियां हैं, ये लोग राधा रानी के हृदय के अंदर क्या चल रहा है उसको समझ जाते हैं और कर देते हैं। पहले चार प्रकार के सेवक रहते हैं, एक सेवक को बोलेंगे कुछ करने के लिए बोलेंगे तो वो आधा करेगा, है? मन नहीं रहेगा, गाली करते करते थोड़ा करेगा, ये सबसे लोअर लेवल का सेवक है। तीसरा लेवल का सेवक है, उसको अगर कुछ बोलेंगे करो, जो बोलेंगे वो करेगा, पानी लेके रखो तो पानी लेके रखेगा, उसका आगे नहीं करेगा, अरे ये भी करना चाहिए, आपने बोला नहीं, जो बोला वही करेगा, उसका आगे एक पॉइंट भी नहीं करेगा, मशीन जैसा, ये तीसरा लेवल का सेवक है। दूसरा लेवल का सेवक है, उसको अगर कुछ बोलेंगे सेवा करने के लिए, सेवा करेगा और उसके रिलेटेड आगे जो भी चाहिए वो भी करके रख देगा, अभी पानी मंगा रहे हैं तो कुछ प्रसाद लेंगे वो भी अरेंजमेंट करके रख देगा, ये दूसरा लेवल का सेवक है। और सबसे उत्तम सेवक, पहला लेवल का सेवक, उसको बिना बोले, अरे 12 बज गया तो अभी मालिक प्रसाद लेंगे, तो लंच का पानी का सब व्यवस्था करके ही रख देगा, आप अंदर आएंगे तो सब कुछ रेडी रहेगा, अरे बोला नहीं, बोला ये तो टाइम है सर, ये फर्स्ट लेवल का सेवक, मतलब उसको बोलने का जरूरत नहीं है, बिना बोले वो कर देता है, उसको पहला लेवक सेवक बोलते हैं। तो बोले कि ये जो आठ सखियां है ना, ये वैसे सेवक हैं। राधा रानी बिना बोले उनका हृदय का बात को समझ जाती है और सेवा कर देते हैं। बोले ठीक है चलो इनके पास जाके मिलते हैं अष्ट सखियों को। तो नारद मुनि जाते हैं, अष्ट सखियों को मिलते हैं, बोले अंत में मुझे भगवान कृष्ण के सबसे बड़े भक्त मिल गए। तो अष्ट सखिया बोला रहे, अरे हम कौन सा भक्त है, हम भक्त कुछ नहीं, कौन असली भक्त है? बोले कि राधा रानी। अरे सबसे बड़ा भक्त तो राधा रानी है, वो भगवान के सबसे बड़ा भक्त है, और वो कौन है, वो भगवान के ही भक्त का एक स्वरूप है, और हमेशा भगवान का सेवा में लीन रहती है, हम लोग बस तो उसको असिस्ट करते हैं। तो असली में जो भक्त है तो राधा रानी है, जो जो जिनका जन्म हुआ है भगवान का सेवा करने के लिए। तो राधा रानी का जो स्वरूप है वो भगवान कृष्ण से अभिन्न है, है? भगवान कृष्ण अगर शक्तिमान है तो राधा रानी उनके शक्ति है। कभी कभी लोग बोलते हैं कि अरे भगवान कैसे राधा रानी के साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं, अभी मेरे पास ये माउस है, ये माउस को मैं ऐसा चलाऊं वैसा चलाऊं, ये मेरा प्रॉपर्टी है ना, जैसे भी चला सकता हूं ना। अभी राधा रानी कौन है, उनका जन्म कैसे हुआ है? राधा रानी भगवान कृष्ण के शरीर से उनका जन्म हुआ है, भगवान कृष्ण का ही शक्ति है। जिस प्रकार सूर्य और सूर्य का रोशनी अलग है, कुछ भेद है कुछ, जहां सूर्य है वहां सूर्य का रोशनी है, उसी प्रकार भगवान कृष्ण और राधा रानी में कोई भेद नहीं है। राधा रानी कृष्ण अगर सूर्य हुए तो राधा रानी सूर्य का रोशनी है। तो उन दोनों में अगर कुछ लीला है तो हमको अगर कुछ दूसरे रूप से देख रहे हैं तो हमारा प्रॉब्लम है, क्योंकि दोनों में कोई भेद नहीं, एक ही है। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी है चैतन्य चरितामृत में बोलते हैं, राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी, अन्य नो विलास रस आस्वादन करी। दो शरीर है लेकिन एक आत्मा है, राधा और कृष्ण एक आत्मा है, दोनों शरीर है, लीला को आस्वादन करने के लिए दो शरीर बने हैं लेकिन एक ही आत्मा है, ये है राधा और कृष्ण, और कृष्ण उसमें शक्तिमान है और राधा उनका शक्ति है। इसलिए खास करके गौड़ीय वैष्णव के लिए राधा अष्टमी, कल था राधा अष्टमी का दिन, बहुत ही अद्भुत माना जाता है, क्योंकि जो विष्णु को पूजा करते हैं उनको वैष्णव बोलते हैं, जो कृष्ण को पूजा करते हैं उनको कार्ष्णीय बोलते हैं, और जो राधा रानी को पूजा करते हैं परम गौरी उनको गौड़ीय बोलते हैं। तो हमारा परंपरा अगर देखेंगे तो हमारा गौड़ीय गुरु शिष्य परंपरा है, हमारा हर आचार्य को देखेंगे तो कोई ना कोई मंजरी है जो कि राधा रानी को असिस्ट करते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर देख लीजिए, रूप गोस्वामी देख लीजिए, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, कोई भी आचार्य को ले लीजिए, हमारे परंपरा में सब एक एक मंजरी है, रूप गोस्वामी रूप मंजरी है, जो कि हर आचार्य राधा रानी को सेवा कर रहे हैं। तो ये इसलिए राधा अष्टमी खास करके हमारा गौड़ीय गुरु शिष्य परंपरा में जन्माष्टमी से भी ज्यादा महत्व रखता है, क्योंकि हमारे जो आराध्य देवी राधा रानी जो कृष्ण का सेवा करते हैं उनका जन्मदिन है। तो ये राधा अष्टमी बहुत ही पावन तिथि था, और इसमें देखिए आगे क्या बोलते हैं चैतन्य चरितामृत में, कृष्ण प्रेम भाविता जहार चितेंद्रिय काय कृष्ण निज शक्ति राधा क्रीड़ा र सहाय। भगवान कृष्ण का ही प्रेम को आस्वादन करते हुए राधा रानी भगवान का सेवा करती है। सर्वलक्ष्मी शब्द पूर्व करी आचे व्याख्यान, सर्वलक्ष्मी गणेर तिह यहाँ अधिष्ठान। जितने सारे भगवान के शक्ति हैं, राधा रानी से रुक्मणी आती है, रुक्मणी से 16,100 रानी का एक्सपांसन होता है, वहां से लक्ष्मी जी का एक्सपांसन होता है, लक्ष्मी जी से जितने सारे दुर्गा देवी चंडी पार्वती वो सब एक्सपांसन होता है। सभी देवियों का जो स्रोत है मूल है वो राधा रानी है, क्योंकि वो भगवान का असली शक्ति है। तो आइए इसको राधा तत्व को नजर में रखते हुए हम राधा रानी के कुछ लीलाओं का चर्चा करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट कभी कभी लीला चर्चा करते हैं तो बहुत थोड़ा लोग उसको चीप ले लेते हैं। तो थोड़ा लीला चर्चा करने से पहले अगर तत्व राधा तत्व को जब हम समझते हैं, उस तत्व को समझते हुए अगर राधा रानी का लीला को स्मरण करेंगे तो उसका हमको पूरा लाभ मिलेगा। तो राधा रानी का जन्म अलग अलग रूप से हुआ रहता है। बोलते हैं कि जब वृषभानु महाराज का बहुत समय हो गया था, उनका कोई संतान जन्म नहीं हो रहे थे, बोलते कि नदी के किनारे कोई अगर पवित्र नदी के किनारे अगर वास करते हैं तो जल्दी से संतान जन्म होता है। तो कृष्ण का भी जन्म नहीं हो रहा था नंद बाबा को, वो पहले नंदगांव में रहते थे, तो नंदगांव से वो भी यमुना के किनारे आ जाते हैं। कहां पर कृष्ण कहां पर आते हैं नंद बाबा? गोकुल महावन आ जाते हैं। अगर देखेंगे तो गोकुल महावन यमुना के किनारे, तो वहां पर जैसे ही आते हैं कृष्ण जन्म हो जाते हैं। और वृषभानु महाराज भी रह रहे थे बरसाना, तो उनका भी कोई संतान जन्म नहीं हो रहा था, तो वो कहां पर आ जाते हैं? रावल, वो भी देखेंगे तो रावल यमुना के किनारे। वो जैसे ही रावल में आते हैं तो एक दिन वो स्नान कर रहे थे और एक कमल के फूल में एक पुत्री कन्या बहती हुई उनको मिलती है, तो फिर उनको लेते हैं राधा रानी को। लेकिन घर में जब लेके आते हैं तो देखते हैं कि इनका आंख कान मुंह कुछ काम नहीं कर रहा है, आंख बंद है, कुछ बोल नहीं रहे, कुछ सुन नहीं रहे। तो वृषभानु महाराज थोड़ा दुखित हो जाता है, अभी बच्चा है लेकिन सुन नहीं पा रहा, देख नहीं पा रहा, बोल नहीं पा रहा, तो कष्ट लगेगा ना माता पिता को। तो उनके बड़े भाई थे श्रीदामा। तो एक दिन नारद मुनि जब फिर से नारद मुनि आते हैं जब उनके घर में आते हैं तो नारद मुनि जब आते हैं तो उनको श्रीदामा को दर्शन करवाते हैं। नारद मुनि श्रीदामा को देखते हैं और सब कुछ देखते हैं, बोलते हैं कि बस एक ही संतान है आपका, तो ये पुत्री कन्या को दर्शन नहीं करवा रहा। अभी कभी कभी अगर बेटा गूंगा है अंधा है तो अभी क्या दिखाएंगे, अभी अच्छा नहीं लगेगा ना। तो नारद मुनि को सब पता है। नारद मुनि बोला बस एक ही संतान है आपका, नहीं और एक संतान भी है लेकिन वो अभी क्या बोलूं, अभी अंधी है, सुन नहीं रही है, बहरी है, अभी क्या, फिर भी दिखाओ कैसा है। तो फिर राधा रानी को लाके दिखाते हैं, तो आंख बंद है, कुछ नो रेस्पॉन्स, कुछ सुन नहीं रही है। तो नारद मुनि बोला अरे इनका जन्मदिन का आपका बर्थडे सेलिब्रेशन किया कि नहीं? बोला अभी इनका क्या बर्थडे सेलिब्रेशन करेंगे, अंधी है, कुछ नहीं देख रहे, नहीं बोल रहे, सब लोग आएंगे 10 चीज बोल के जाएंगे, तो उससे अच्छा मैंने कुछ किया नहीं। बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं करने का, धूमधाम से करो जन्मदिन का सेलिब्रेशन। अरे करो तभी तो कुछ होगा। बोले उनका इच्छा नहीं हो रहा, फिर भी नारद मुनि बोल रहे हैं इतना धूमधाम से करो कि व्रज के कोने कोने से लोग सब लोग आना चाहिए, और खास करके याद रखो नंद बाबा और यशोदा जरूर आना चाहिए। बोला अच्छा ठीक है ठीक है। तो सबको इनविटेशन देते हैं और इतना धूमधाम के उनका जन्मदिन का सेलिब्रेशन करते हैं, सब लोग आते हैं और नंद बाबा कृष्ण भी आते हैं और उनके बेटे को भी लेके आते हैं। कौन थे उनके बेटे? कृष्ण का जन्म हो गया था जन्माष्टमी, उनको लेके आते हैं। तो उनको लेके आते हैं, सब लीला चल रहा है, सब नाच रहे हैं, खा रहे हैं, प्रसाद चल रहा है, और कृष्ण छोटे थे ना, पर छोटे थे उस टाइम में, ऐसे ऐसे रेंगते रेंगते, अभी बच्चे छोटे रहते तो उनको कैसे वो छोटा सा एक क्रेडल जैसा रहता है ना उसमें डाल देते ना, तो कृष्ण रेंगते 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 जाके उसको पकड़ के देखते हैं राधा रानी को, और फिर कृष्ण क्या करते हैं अपने हाथों से राधा रानी का शरीर को स्पर्श करते हैं। जिस क्षण कृष्ण स्पर्श करते हैं उस क्षण राधा रानी अपने आँख खोलती है। तो राधा रानी भगवान राधा रानी, क्योंकि भौतिक संसार में जब राधा रानी आती है तो राधा रानी ने तय कर लिया था कि मैं संसार में किसी को नहीं देखूंगी, पहले व्यक्ति को देखूंगी किसको, जो मेरे प्राण रात रहेंगे, जब वो मेरे आंखों, क्योंकि मैं आई हूं उनका सेवा करने के लिए, जब कृष्ण बोले कि राधे हमको जाना है लीला करने के लिए, राधा रानी बोली मैं नहीं जाऊंगी। बोला अरे क्यों, क्या हो गया? अरे कौन छोड़ के जाएगा वृंदावन, यहाँ पर यमुना है, गोवर्धन है, कुंजिया कुंज बन है, वहां पर जाएगा कौन, जाएगा वहां पर भौतिक संसार में, मैं नहीं जाने वाली हूँ। तो कृष्ण बोला अरे तो जाना तो पड़ेगा, अभी टाइम हो गया, तुम नहीं जाओगी तो मैं लीला कैसे करूंगा। तो राधा रानी बोले एक कंडीशन में मैं जाऊंगी। बोले क्या कंडीशन? मुझे मेरा घर एज इट इज चाहिए। भगवान का घर कौन सा है? वृंदावन धाम। अभी यहां पर भी वृंदावन है ना, आप लोग जाएंगे टूर में देखेंगे वृंदावन में। बोले तीन चीज कंडीशन डाली, एक है तो वृंदावन गोवर्धन पर्वत रहना चाहिए, और उस गोवर्धन पर्वत में यमुना बहना चाहिए, और उस यमुना गोवर्धन पर्वत में हमारे कुंज सब रहना चाहिए, तब जाके मैं वहां पर जन्म लूंगी, नहीं तो नहीं जाऊंगी। तो भगवान कृष्ण ने बोले कि कंडीशन से अप्लाई मैं करता हूं अरेंजमेंट। तो भगवान ने पहले गोवर्धन भेजा, यमुना भेजा, वृंदावन भेजा, सब कुछ भेजने के बाद ये आती है। वो भी आके आंख नहीं खोल रही, देखो पहले आप सामने आओ फिर आंख खोलूंगी, क्योंकि ये पता चलता कि राधा रानी बताती कि जीवन का हर पल, हर एक पल हमारा भगवान का सेवा में जाना चाहिए, राधा रानी सिखा रही है। एक एक पल हमको, एक एक जो आंखों से देखें तो भगवान कृष्ण स्मरण आना चाहिए, कृष्ण का श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम, जो भी हम करते हैं भगवान का रिलेटेड ही होना चाहिए, उनका दर्शन, उनका देखना, उनका सुनना, उनका सेवा। ये राधा रानी बताती है किस प्रकार एक भक्त को अपना जीवन जीना चाहिए। तो बहुत सारे लीलाएं हैं, एक लीला चर्चा करेंगे। चलिए एक लीला चर्चा करते हैं, राधा रानी का विवाह। कभी कभी लोग ऐसा बोलते हैं अरे राधा कृष्ण का विवाह नहीं हुआ, ऐसा बोलते हैं ना। तो जो भी ऐसा बोलता है उनको बोलना कि राधा कृष्ण का पांच पांच बार विवाह हुआ है, है? पांच बार विवाह हुआ है। आज भी आप जाएंगे वृंदावन में, एक जगह है उसका नाम बोलते हैं भांडीर भट्ट। आप जाएंगे भांडीर भट्ट में देखेंगे, और ये विवाह कौन करवा रहे हैं? कोई छोटा व्यक्ति नहीं है, सत्यलोक से, ब्रह्म लोक से ब्रह्मा जी आके खुद पुरोहित हैं यहाँ पर, उनसे बड़ा ब्राह्मण कौन है? चार वेद जिनसे निकला है, ब्रह्मा जी आके विवाह कर रहे हैं कृष्ण और राधा रानी का। तो जो ऐसा बोलता है ना उनको पहले मुंह तोड़ जवाब देने का है। भांडीर भट्ट में जाओ, अभी भी मंदिर है, और इस मंदिर में आप जाएंगे तो विग्रह आप देखेंगे, ये विग्रह है मंदिर का, जहां पर राधा कृष्ण मंडप में बैठे हैं और ब्रह्मा जी विवाह कर रहे हैं, ये विग्रह है मंदिर का। तो भांडीर भट्ट में ये विवाह हुआ था। तो विवाह हुआ भी था, विवाह नहीं भी हुआ था बोल सकते हैं। तो लीला के हिसाब से लीला विवाह इसको बोलते हैं, और सामाजिक दृष्टिकोण से विवाह नहीं भी हुआ था बोल सकते हैं। तो ऐसा भगवान का पांच पांच बार विवाह हुआ था। हाँ बोले अरे पांच पांच बार विवाह क्यों किया था? तो कभी कभी घर घर में आपको पता रहेगा, जब नए नए शादी होता है, मैरिज होता है, बहुत कुछ स्मूथ चलते रहता है, समय के साथ धीरे धीरे झगड़ा भी होता है कभी कभी। पहले पहले बहुत आराम से, बहुत मीठा मीठा बात चलता है, बाद में थोड़ा विस्फोट भी होता है कभी कभी, जो जो गृहस्थ आश्रम में रहेंगे आपको साक्षात्कार रहेगा। तो इसीलिए अब तिरुपति बालाजी में जाएंगे, तो तिरुपति बालाजी में जब तिरुपति जी का विवाह हुआ था पद्मावती से, विवाह कुछ दिन होते ही झगड़ा चालू हो गया, बालाजी और पद्मावती के बीच में घमासान झगड़ा हो गया। तो पद्मावती बोले बस हो गया, अभी मायके जा रही हूँ सब छोड़ छाड़ के। तो पद्मावती निकल गई पूरा। तो बालाजी बोले जाओ, जाना है तो जाओ। तो उधर एक बहुत बड़े भक्त थे उनके, उनका नाम था हातीराम स्वामी। तो उन्होंने बोला अरे क्यों जा रहे हो, उन्हें झगड़ा कर रहे हैं हमेशा। अरे कुछ नहीं होता, आ जाओ आ जाओ, आज हम आपका फिर से विवाह करते हैं। तो हातीराम स्वामी जो थे फिर से विवाह, देखो नया विवाह होता है इसलिए एनिवर्सरी, जितना भी झगड़ा होता है एनिवर्सरी के दिन सब अच्छे से बात करते हैं ना, क्योंकि आज एनिवर्सरी है। तो बोलते आज आपका हम फिर से विवाह करेंगे। तो फिर से विवाह होता है तो फिर से अच्छे से बात करते हैं। कल फिर से झगड़ा होता है पर चिंता मत करो, मैं यहाँ पर ही हूँ, हर रोज आपका विवाह करूंगा। इसलिए आप तिरुपति बालाजी में जाएंगे, हर रोज बालाजी भगवान का विवाह, श्रीनिवास और पद्मावती का विवाह हर रोज होता है, एवरीडे विदाउट फेल, ताकि झगड़ा ना हो। तो ये भी एक अच्छा चीज है, मतलब फिर से जो रिलेशन है, फिर से सब कुछ ताजा हो जाता है, तो फिर छोटा मोटा जो डिफरेंसेस झगड़ा वो सब नीचे चला जाता है। तो ये प्रथा आज भी चालू है, वहां पर हाथीराम स्वामी ये झगड़ा करते हैं। तो इसलिए भगवान कृष्ण राधा कृष्ण का बीच बीच में ऐसा विवाह पांच बार हुआ है। तो विवाह नहीं भी हुआ है सामाजिक दृष्टिकोण से अगर देखेंगे तो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि भगवान को परिक्या रस का आस्वादन करना था। विवाह में जो रस रहता है उसको स्वकीय रस बोलते हैं, लेकिन स्वकीय रस से सबसे ऊपर में जो रस रहता है उसको परक्या रस बोलते हैं। तो देखिए कभी कभी अगर विवाह हुआ नहीं है और अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन पुरुष और स्त्री दोनों प्रेम करते हैं तो बहुत बड़ा एक लॉन्गिंग रहता है, अट्रैक्शन रहता है, तो उसको पर क्या बोलते हैं, जो कि राधा कृष्ण का वैसा होना चाहिए सोच के पौर्णमासी ने अरेंजमेंट किया था। नहीं तो कभी से राधा रानी का विवाह हो जाता है, क्योंकि राधा रानी को आशीर्वाद मिला था दुर्वासा ऋषि से। कौन सा आशीर्वाद मिला था? जब एक बार सब गोपियां खेल रहे थे, माताएं लोग रिलेट कर पाएंगे, बचपन में हम सब खेलते हैं ना, किचन का टॉयज बना के राइस दाल सब्जी बनाते हैं, तो गोपियां ऐसे एक बार खेल रहे थे, तो वहां पर दुर्वासा ऋषि आते हैं, तो एक गोपी क्या करती है, खेल खेल में मटका उनके हाथ में दे देती है, महाराज जी खीर खाओ। तो देखते हैं नीचे रेती दे रही है और बोल रही है खीर खाओ, भस्म कर दूंगा तुम्हें, बोलते हैं। और डर के मारे दौड़ के जाते हैं, राधा रानी को पकड़ लेते हैं, अरे कोई तो आया है भस्म कर देगा बोल रहा है। राधा रानी बोले कौन है? पता नहीं, कोई तो मुनि आया है। देखते अरे तो दुर्वासा ऋषि, ये तो श्राप देने में फेमस है। बोले क्या 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 तूने? बोले कि उनको बोला खीर खाओ, बोले अरे मिट्टी दे दिया। बोले रुको रुको अभी मैं थोड़ा हैंडल करती हूँ। तो राधा रानी चलते, अरे अरे मुनिवर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, क्या हो गया? बोले अरे मिट्टी दे रही है, बोल रही है कि खीर खाओ, सन्यास का कितना बड़ा अपमान कर रही है, ऐसा कोई करता है क्या? बोले आपने खाया क्या खीर? कौन मिट्टी कोई खाता है क्या? अरे बिना खा के कैसे बोलोगे ये मिट्टी है ना, खा के फिर बोल सकते हो ना क्या है। तो सबके सामने चैलेंज करती है राधा रानी, तो थोड़ा दुर्वासा ऋषि भी थोड़ा हिल जाते हैं, अरे सबके सामने ओपन चैलेंज कर दिया। तो फिर मटका लेते हैं और सबके सामने थोड़ा मुंह में डालते हैं, थोड़ा रेती मुंह में डालते हैं, और जैसे ही रेती मुंह में डालते हैं ऐसा टेस्ट उनको लगता है, ऐसा खीर कभी खाया नहीं था। बोले अरे क्या चल क्या रहा है? बोले ऐसा तो मैंने कभी बहुत बहुत व्यंजन खाया, ऐसा खीर नहीं खाया था। तो बोले तो कौन है पुत्री? बोले अरे हम ब्रिशवान पुत्री राधा रानी हो। तू राधा रानी? तो इतना खुश हो जाते हैं, दुर्वासा ऋषि उनको दो ब्लेसिंग देते हैं। एक देते हैं कि तुम्हारे हाथ से जो भी बनेगा अमृत की तरह स्वाद रहेगा, और जो भी खाएगा उसको कभी बीमारी नहीं होगा। और ये खबर चारों तरफ वृंदावन में फैल जाता है और खबर पहुंच जाता है यशोदा तक। तो यशोदा सोचती है ऐसा है क्या? तो कीर्तिदा माता को एक लेटर लिखती है, अगर राधा रानी को हर रोज भेजोगे तो कृष्ण के लिए थोड़ा प्रसाद बनाएगी तो अच्छा रहता ना। कीर्तिदा बोलते ठीक है। तो राधा रानी हर रोज बरसाना से आती थी नंदगांव में, भगवान के लिए लंच बना के जाती थी। तो हर रोज आती थी जाती थी। तो एक दिन यशोदा सोचती है हर रोज जा रही तो इसको बहू बना दूं तो काम ही खत्म, घर में ही रहेगी। तो इसलिए जिसलिए किसी के साथ विवाह होता है तो हाथ पीली करते हैं ना, टर्मरिक पेस्ट लगाते हैं। तो एक दिन राधा रानी का हाथ पीली कर देती है यशोदा, और राधा रानी भी खुश हो जाती है। फिर रिटर्न जब बरसाना आती है तो सोचती है मैंने तो पापा मम्मी को कुछ बोला नहीं अभी तक। ललिता बोलती कि पिटाई हो जाएगा घर में जाओगी तो, ऐसे हाथ पीली करके धो लो जल्दी जल्दी। तो वहां एक तालाब में धो लेती, आज भी आप बरसाना जाएंगे तो तालाब का नाम क्या है? पीली पोखर। वहां पर आप देख सकते हैं पानी का कलर थोड़ा पीला रहता है क्योंकि राधा रानी ने हाथ धोया था। और घर चली जाती है, लेकिन एक बार हल्दी लग गया तो देखिए जितना भी धोइए थोड़ा तो हल्दी का कलर रहेगा। तो कीर्तिदा माता को पता चल जाता है कि क्या है, हाथ क्यों तेरा पीला है, क्या हुआ है, और सब कुछ बता देती है ऐसा ऐसा हुआ है। अरे ऐसा? तो कीर्तिदा माता गुस्सा नहीं करती, बोला अच्छा ये कृष्ण के साथ अगर तुम्हारा विवाह हो जाएगा तो फिर बहुत एक बैलगाड़ी में इतना सारा मोती डाल के नंदगांव को भेजते हैं कि हमको मंजूर है रिश्ता। तो उधर नंद बाबा यशोदा देखते कह रहे रिश्ता मंजूर हो गया। तो फिर लेकिन नंद बाबा थोड़ा मायूस हो जाते हैं। कृष्ण बोले क्या हो गया पापा? बोले अरे मंजूर तो हो गया, अभी मंजूर करना है तो मुझे इसका डबल मोती भेजना पड़ेगा क्योंकि हम लड़के वाले हैं ना, लेकिन मेरे पास इतना पैसा नहीं है। मैं नंद हूँ, मतलब 9 लाख गैया हमारा है भाई, लेकिन वो ब्रिशवान हुए उसके पास 12 लाख गैया है, मेरे से भी धनी है वो, मेरे इतना पास पैसा नहीं है मेरे पास। कृष्णा बोले कि अरे पापा डरो मत, मैं हूँ ना, आप एक काम करो जितना मोती है मुझे दे दो, मैं रात में खेती लगाता हूँ, सुबह तक मोती डबल कर दूंगा। तो बोले बेटा मोती का खेती नहीं होता है, वो धान का होता है, राइस का होता है। नहीं नहीं मैं उगा दूंगा, मुझे दो ना। तो भगवान इतना नाटक इतना बोलते तो ठीक है, तो उनको मोती दे देते हैं और रात में मोती का लगाते हैं और मोती को फसल उगाते हैं, और सुबह जब तक सुबह होता है हर पेड़ में एक एक मोती उग जाता है और डबल हो जाता है। और अगले दिन पूरा बैलगाड़ी में सब मोती भेजते हैं बरसाना, और रिश्ता फाइनल विवाह होने ही वाला था। पौर्णमासी सोचती कि अभी विवाह हो जाएगा तो पर क्या रस आएगा किधर से। पौर्णमासी सबसे बड़ी ब्राह्मणी थी जो कि उनकी इच्छा से सब कुछ चलता है, जो कि भगवान का ही शक्ति। बोलते कि ये विवाह नहीं हो सकता, अभी हॉल्ट कर दी विवाह में, और अभी विवाह मत करो, समय के बाद में विवाह करने का बोलूंगा। और बीच में क्या करती है, अभिमन्यु जो भगवान कृष्ण के एक सखा है, उनके एक्सपांसन है, उनके साथ विवाह राधा रानी का कर देती है। और जिसके कारण ये जो परकिया रस का आस्वादन भगवान कृष्ण और राधा रानी के बीच में हमेशा हो सके। तो सोचिए ये जो बहुत सुंदर लीला, ऐसा बहुत सारा लीला है, समय अभी समाप्त हो चुका है तो यहाँ पर विराम रखेंगे। जय श्री राधा रानी की जय। तो अभी भगवान का आरती होगा, सब लोग खड़े हो जाइए और आरती में भाग लीजिए। भगवान का महाआरती शुरू हो गया है। प्रभु जी लोग जो हैं बाएं तरफ आ जाइए, माता जी लोग जो हैं दाएं तरफ रहिए। हरे कृष्णा।
वृंदा राधा वृंदावन बिहारी राधे, बोलिए वृंदावन बिहारी राधे। जय राधा वृंदावन बिहारी राधा वृंदावन बिहारी राधे। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। प्रभुपाद